ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथ श्रीमद्भागवतम स्कंद 8 अध्याय 5 और श्लोक संख्या 25। तत्र दृष्टा स्वरूपाय श्रुतपूर्वाय वै प्रभो अस्तुतिम् अवृत देवीभिः गिरिविश्व अवहितेन्द्रिया। धन्यवाद। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की तत्र वहां श्वेत द्वीप में अदृष्ट स्वरूपाया भगवान को जो ब्रह्मा तक को नहीं देखते दिखते सॉरी दिखते श्रुत पूर्वाया किंतु जो वेदों से सुने जाते हैं वह निस्संदेह प्रभु ब्रह्मा जी अस्तुतिम वैदिक वाङ्मय से प्राप्त अस्तुति अवृत की गई दैवी भी अस्तुतियों द्वारा या वैदिक सिद्धांतों को पालने वाला व्यक्तियों द्वारा गिर भी ऐसे गीतों या उच्चारणों द्वारा तू तब अवहित इंद्रिया स्थिर चित। तो अनुवाद ध्यान पूर्वक सुनिए। वहां श्वेत द्वीप में ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की यद्यपि उन्होंने परमेश्वर को इसके पूर्व कभी नहीं देखा था। चूंकि उन्होंने वैदिक वाङ्मय से भगवान के विषय में सुना हुआ था अतः उन्होंने स्थिरचित होकर भगवान की उस तरह स्तुति की जिस प्रकार वैदिक साहित्य में लिखी हुई या मान्य है। तात्पर्य कहा जाता है कि जब ब्रह्मा तथा अन्य देवता श्वेत द्वीप में भगवान का दर्शन करते हैं तो वे उनका साक्षात दर्शन नहीं कर पाते अपितु उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान आवश्यक कार्यवाही करते हैं। ऐसा हमने अनेक बार देखा है। श्रुत पूर्वाय महत्वपूर्ण है। प्रत्यक्ष दर्शन करने या सुनने से हमें अनुभव होता है। यदि किसी का प्रत्यक्ष कर पाना संभव नहीं होता तो उसके विषय में प्रमाणिक स्रोतों से सुना जा सकता है। कभी कभी लोग पूछते हैं कि क्या हम उन्हें ईश्वर का दर्शन करा सकते हैं। यह अत्यंत हास्यास्पद है। ईश्वर को स्वीकार करने के पूर्व उनका दर्शन करना आवश्यक नहीं होता। हमारा इंद्रिय बोध सदा अपूर्ण रहता है अतः ईश्वर का दर्शन कर लेने पर भी हम उन्हें नहीं समझ सकेंगे। जब कृष्ण इस धरा पर थे तो अनेकानेक लोगों ने उन्हें देखा था किंतु वे ये नहीं समझ पाए कि वे भगवान हैं। अब जानन्ति मामूढ़ा मानुषीं तनु आश्रितम्। यद्यपि धूर्तों तथा मूर्खों ने कृष्ण को साक्षात देखा था किंतु वे ये नहीं समझ सके थे कि वे भगवान हैं। ईश्वर का साक्षात दर्शन करके भी अभागा मनुष्य उन्हें नहीं समझ सकता। अतः हमें प्रमाणिक वैदिक साहित्यों से तथा वेदों को समुचित रूप से समझने वाले पुरुषों से भगवान कृष्ण के विषय में सुनना होता है। यद्यपि ब्रह्मा ने भगवान को इसके पूर्व नहीं देखा था किंतु उनका दृढ़ विश्वास था कि वे श्वेत द्वीप में थे। इस तरह वे वहां गए और उनकी स्तुति की। ये स्तुतियां सामान्य कल्पित स्तुतियां नहीं थी। स्तुतियों को वेद सम्मत होना चाहिए जैसा कि इस श्लोक में आगत दैवी भीरगी भी शब्दों से सूचित होता है। हम अपने कृष्ण भावनामृत आंदोलन में किसी ऐसे गीत की अनुमति नहीं देते जो पहले से स्वकृत न हो या प्रमाणिक भक्तों द्वारा गाया न गया हो। हम मंदिर में फिल्मी गानों को गाए जाने की अनुमति नहीं दे सकते। हम प्रायः दो गीत गाते हैं, एक है श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद, यह प्रमाणिक गीत है। इसका उल्लेख चैतन्य चरितामृत में सदा होता है और आचार्यों ने इसे स्वीकार किया है। दूसरा गीत है महामंत्र हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम नरोत्तम दास ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर तथा लोचन दास ठाकुर के भी गीत गा सकते हैं, लेकिन उपयुक्त दोनों गीत भगवान को प्रसन्न करने के लिए पर्याप्त हैं। भले ही हम उनका दर्शन ना कर सके, भगवान का दर्शन करना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि प्रमाणिक साहित्य या अधिकारी जनों के प्रमाणिक वक्तव्यों के द्वारा उनकी प्रशंसा करना। ओम अज्ञानति मिरामयस्य ज्ञानञ्जनशलाकय चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदामयं ददाति स्वपदान्तिकं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है आज के इस प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत कक्षा में। तो सबसे पहले मैं आप सभी भक्तों का आशीर्वाद की याचना करते हुए, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मेरे में कोई ऐसी योग्यता नहीं है यहाँ पर बैठने की, ना ही अपना कोई साक्षात्कार है, लेकिन फिर भी अपने शुद्धिकरण के लिए, आप भक्तों की प्रसन्नता के लिए, और विशेष रूप से हमारे बीच में उपस्थित हैं हेजग्रस वंशी लंबू भौजी, हमारे शिक्षक हैं भौजी, से बहुत कुछ सीखा हमने। तो जैसे कि हम जानते हैं ये वास्तव में श्रीमद् भागवत का पढ़ने का यही लक्ष्य होना चाहिए कि हमें जो है इस भौतिक जगत से बाहर जाना और भगवान की शरण लेना। जैसे कि एक बार एक जेल था और बहुत ही प्रसिद्ध जेल, उसमें जैसे हम जानते हैं अगर कोई जेल फेमस है तो उसमें बहुत ही फेमस कैदी भी रहते हैं। तो एक बार क्या हुआ, तो उसमें से लेकिन कुछ कैदी थे लगभग 4 या 5, वो जेल से भाग गए। तो सबको बहुत आश्चर्य हुआ कि जो मतलब मोस्ट वांटेड क्रिमिनल होते थे उनको इस जेल में लाया जाता था, लेकिन फिर भी ये जेल से कैसे बाहर निकल गया। तो उससे पूछा गया, भाई आखिर कैसे निकला तुम यहाँ से? तो उसने बताया कि जब मैं जेल के अंदर था तो वहाँ पे जेल के अंदर एक लाइब्रेरी थी, जेल में भी लाइब्रेरी होती है, हम गए थे पिछले 1 साल पहले लगभग तिहार जेल में, आप जाएंगे वहाँ भी लाइब्रेरी भी है और वहाँ पे आपको हमारी भगवद गीता भी मिलेगी, लेकिन किताब पढ़ने के लिए नहीं गई वहाँ पे। तो वहाँ पे कह दिया कि उन कैदियों ने बोला कि जब उस लाइब्रेरी में हमने एक पुस्तक देखी जिसमें उस जेल के बारे में सब कुछ बताया था कि इस जेल का क्या हिस्ट्री है, इसको किसने बनवाया, ये जेल किस तरह से बना है, इस जेल में कितने दरवाजे हैं, अगर कुछ इमरजेंसी हो तो यहाँ से कैसे निकला जाए, सब कुछ उसके बारे में बताया गया था। तो उसने बोला कि जब मैंने इसको पढ़ा तो हमने इसको डिस्कस किया और हमने उसको फक किया तो जेल से बाहर निकल गया। उसी तरह से ये जो भौतिक संसार है ये क्या है, उसी तरह जेल के समान है। तो अगर हमें यहाँ से निकलना है तो क्या करना होगा, हमें श्रीमद् भागवत भगवद गीता का शरण लेना होगा। इसको पढ़ के, इसको सुनकर, इसको अपने जीवन में अपना कर हम जो है भौतिक संसार से बाहर निकल सकते हैं। और निकल के कहाँ चले जाएंगे, भगवान के पास। जैसे यहाँ पे ब्रह्मा जी कहाँ पहुँच गए हैं, श्वेत द्वीप। तो श्वेत द्वीप कहाँ है, ऐसा बताया था कि श्वेत द्वीप है भौतिक संसार में लेकिन ये दिव्य है। जैसे कि प्रभा जी पिछले श्लोक के तात्पर्य में कहते हैं, जैसे मान लीजिए कोई सिटी है तो वहां पे जो सिटी का गवर्नमेंट ऑफिसर है, जो बड़े गवर्नर होते हैं, तो उनका भी जो रेसिडेंस है वो सिटी के अंदर ही होता है, लेकिन उसका एक विशेष स्थान है। तो सेठ भी भलाके भौतिक जगत में है, लेकिन वो भगवान का घर है, वहां पे जो है श्री दक्षाय विष्णु नित्य निवास करते हैं, तो वो कोई साधारण जगह नहीं है। और भी प्रभुपाद जी समझाते हैं कि जैसे मान लीजिए कि अगर किसी दूसरे, जैसे अगर यूएसए या ऑस्ट्रेलिया, किसी भी कंट्री का एम्बेसी है यहाँ पे इंडिया में, हो सकता है कि वो इंडिया में हो लेकिन इंडियन गवर्नमेंट के रूल के अंदर नहीं है। तो उसी तरह से ये जो श्वेत द्वीप है भौतिक जगत में है लेकिन पूर्ण रूप से दिव्य है। तो ब्रह्मा जी जो है वहां पे जाते हैं, और हम इस जानते हैं इस प्रसंग को कि किस तरह से जब देवताओं के ऊपर संकट आया तो देवताओं ने ब्रह्मा जी को अप्रोच किया, और ब्रह्मा जी अभी जो है सभी देवी देवताओं को लेकर कहाँ गए, श्वेत द्वीप। और ऐसा बताया जाता है कि ब्रह्मा जी ने इनसे पहले कहीं भगवान को देखा नहीं था, वहां पे गए और भगवान से प्रार्थना कर रहे, सिर्फ उन्होंने साहित्यों, वैदिक साहित्यों को पढ़ा था, उनका इसमें इतना विश्वास था कि वो वहां पे गए और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि ये जो ब्रह्मा जी हैं, जैसे कि हमने पहले भी एक तीसरे स्कंद में एक ब्रह्मा जी के बारे में पढ़ा है कि जब वो कारण दक्षाय विष्णु के जब नाभि से प्रकट होते हैं, और फिर उन्हें कुछ पता नहीं होता है, किस तरह से जब वो तप सुनते हैं, फिर तपस्या करते हैं, और हजारों साल के तपस्या के बाद जब भगवान प्रकट होते हैं, तो भगवान उनको दर्शन देते हैं, उनसे हाथ मिलाते हैं और उनको पूरा सृष्टि रचने का निर्देश देते हैं। तो शायद हो सकता है ये ब्रह्मा जी ने अभी तक भगवान को देखा नहीं है, तो शायद पता नहीं, ये शायद दूसरे ब्रह्मा है। तो लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि ब्रह्मा जी का कितने शास्त्रों में फेद है कि उन्होंने भगवान को देखा नहीं, लेकिन उनको पूर्ण विश्वास है कि भगवान जो है यहाँ पे निवास करते हैं, जब भी कोई समस्या है चलो हम वहां पे भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो वास्तव में शास्त्रों में जो है फेद कैसे आएगा, है कि नहीं? तो सबसे पहले जो है हमें शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, है कि नहीं? जैसे हम भगवान भगवत गीता में खुद कहते हैं, तेषां सदयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददातु बुद्धि, कि भग जाओ, भगवान देखते हैं कि जब हम शास्त्रों को पढ़ते हैं, उसको समझने का प्रयास करते हैं, तो भगवान जो है हमें बुद्धि देते हैं, तो तभी जो है हम शास्त्रों को समझ सकते हैं। जैसे कि श्री चैतन्य महाप्रभु के लीला में भी देखते हैं कि जब महाप्रभु एक बार दक्षिण भारत की यात्रा में गए, और वो जब श्रीरंगम गए तो उन्होंने गेट पर ही देखा कि एक ब्राह्मण है जो कि भगवद्गीता को पढ़ रहा है, हालांकि वो ठीक ठीक उच्चारण भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो उसको पढ़ रहे हैं, उसके आंखों से अश्रु प्रवाह हो रहा है। तो फिर हम इस लीला को जानते हैं कि किस तरह से उनको देखने के बाद जब उन्होंने बताया कि उनके गुरु का आदेश था गीता को पढ़ना, हालांकि वो समझ नहीं रहे फिर भी उसको पढ़ रहे, तो महाप्रभु कितने प्रसन्न हो गए, उनको अपने गले से लगाया। तो हमें जो है इन ग्रंथों को प्रतिदिन पढ़ने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ये जो ग्रंथ है साधारण ग्रंथ नहीं है। जैसे कि अभी शनिवार को अभी हम भागवत कक्षा में हमने देखा कि वीडियो के अंदर किस तरह से श्रीला प्रभुपाद जी अपने अंतिम समय में भी जो है श्रीमद् भागवतम का वो क्या कर रहे हैं, ट्रांसलेशन कर रहे हैं। और वास्तव में ये तो ये ग्रंथ साधारण नहीं है, स्वयं भगवान के अवतार जो वेद व्यास जी हैं उनके द्वारा संकलित है, और फिर ऊपर से जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं श्रीला प्रभुपाद जी का इसमें तात्पर्य है। तो पीछे मैं एक प्रवचन सुन रहा था, तो उसमें एक मायापुर के अंदर एक प्रभुपाद जी के शिष्य हैं भवानंद प्रभु, तो वो बता रहे थे कि एक बार वो प्रभुपाद जी के साथ कुछ प्रभुपाद जी कुछ शिष्य के साथ वो कमरे में बैठे थे, तो उनको प्रभुपाद जी ने बताया कि तुमको पता है कि एक बार मैं आध्यात्मिक जगत में मैं भगवान श्री कृष्ण के साथ था, तो भगवान ने मुझे बोला कि तुम जो है इस भौतिक जगत में जाओ। तो मैंने बहुत रेजिस्ट किया कि नहीं, वहाँ पे भौतिक संसार रहने का कोई जगह नहीं है, वहाँ क्या करूँगा जाकर, लेकिन भगवान ने हमें मुझे बोला कि नहीं तुम जाओ, वहाँ पे सब फैसिलिटी है, हमने गोस्वामियों के द्वारा मंदिरों को हमने ढूंढा है, वहाँ पे वैदिक साहित्य भी लिखे हैं, लेकिन आप वहाँ पे जाइए और इस साहित्यों का ट्रांसलेशन कीजिए ताकि हर कोई जो है अपने जीवन में इसे अपना सके। तो वास्तव में देखा जाए कि श्रील प्रभुपाद जी इसी चीज़ के लिए इस धराधाम पे आए, और हम देखते हैं उनके पूरे जीवन में कि किस तरह से उनका पूरा जीवन इस भागवत का अनुवाद करने में, इसका प्रचार करने में, इसका वितरण करने में। जब श्रील प्रभुपाद जी सबसे पहले भक्ति सिद्धांत महाराज से 1922 में मिले, तभी हम जानते हैं कि पहले इंस्ट्रक्शन में ही भक्ति सिद्धांत महाराज उनको बोला कि आप जो है पढ़े लिखे लगते हैं, आप क्यों नहीं श्री चैतन्य महाप्रभु का संदेश पूरे विश्व में प्रचार करते हैं। तो तभी से श्रील प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि वो वेस्ट में जाएं और इसका प्रचार करें, लेकिन हम देखते हैं कि उसके बाद 40 साल तक प्रभुपाद जी ने इंडिया के अंदर संघर्ष किया, और वो कब गए विदेश, जब उनके पास श्रीमद् भागवतम जो प्रथम स्कंद उन्होंने जब प्रिंट किया, जब उनके पास आया, तब उन्होंने सोचा कि अब समय हो गया वेस्ट जाने का, क्योंकि उनको पूर्ण विश्वास था कि ये जो हरिनाम है और श्रीमद् भागवतम है, सिर्फ ये दो चीज है जिसको पढ़कर सुनकर समझकर किसी का भी जीवन परिवर्तित हो सकता है। और हम जानते हैं किस तरह से वो गए और वहां पे लोगों ने इसको अपनाया, हरिनाम सुना, भागवत को लिया, तो किस तरह से हजारों लोगों ने अपना जीवन जो है कृष्ण महानवी में समर्पित किया। तो इससे इसलिए ये जो ग्रंथ है कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, इसको प्रतिदिन पढ़ने का प्रयास करना चाहिए। और वैसे भी हम देखते हैं कि ठीक है, इसको ग्रंथ को पढ़ना है, इसको समझना है, लेकिन वास्तव में शास्त्रों में फेद तब बढ़ेगा जब हम इसको अपने जीवन में अप्लाई करेंगे। सिर्फ थ्योरिटिकल नॉलेज जो है हमेशा हेल्प नहीं करेगा, हमें इसको जो है अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए, अगर किसी को यहाँ से वृंदावन जाना है तो इंडिया में तो जनरली होता है कि लोग एक दूसरे से, अगर आपको नहीं पता रास्ता तो आप दूसरे से पूछेंगे, तो लेकिन प्रभुपाद जी कहते थे तभी कि अगर भारत में किसी से पूछना हो कम से कम कितने लोगों से पूछना चाहिए, 3 लोगों से। लेकिन कई बार होता है कि हम 10 लोगों से भी पूछते हैं तो भी सही रास्ता नहीं, तभी अपना ही दिमाग लगाना पड़ता है कि कैसे पहुंचना है। लेकिन विदेशों में खास करके ऐसा नहीं होता, लोग क्या फॉलो, अगर कहीं भी किसी को जाना है और उनको नहीं पता रास्ता तो क्या फॉलो करते हैं, जो रूट मैप है उसको फॉलो करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपको यहाँ से वृंदावन जाना हो, उसमें क्या होता है कि आप यहाँ से आधे किलोमीटर जाइए तो पंजाबी बाग क्लब आएगा, वहाँ से जो है फिर राइट लीजिए, फिर 1 किलोमीटर बाद रजौरी गार्डन। तो हम देखते हैं कि जो जो रूट मैप में लिखा हुआ है वो चीज़ें सच हो रही है, हमारा डेस्टिनेशन है वृंदावन जाना है, लेकिन जब हम इसको फॉलो करते हैं तो हर कदम पर देखते हैं कि ये चीज़ें सच हो रही है, तो अगर इसको फॉलो करते जाएंगे तो हम वृंदावन पहुँच जाएंगे। उसी तरह से जब हम शास्त्रों को पढ़ते हैं और सुनते हैं और इसको अपने जीवन में अप्लाई करेंगे तो हर कदम पे हमें आध्यात्मिक साक्षात्कार होंगे, और जब आध्यात्मिक साक्षात्कार होंगे तभी जो है हमें इसमें फेथ बढ़ेगी, तभी हमारा जो है फेथ शास्त्रों के अंदर बढ़ेगा। नहीं तो क्या होगा, साधारण क्या होता है कि जब मान लीजिए कि अगर सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं, अगर मान लीजिए मंदिर में रहते हैं, फर्स्ट क्लास 3 टाइम प्रसाद मिल रहा है, अच्छे कपड़े मिल रहे हैं, सब फैसिलिटी है, घर में सब ठीक चल रहे हैं, बिजनेस अच्छा चल रहा है, बच्चे सब कहना मान रहे हैं, तो कई बार हमें लगता है कि चलो पता नहीं भगवान के साथ हमारे जीवन में जुड़त है भी या नहीं है। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि जब इंद्र के ऊपर संकट आई तो उन्होंने क्या किया, जो अपने सीनियर जो हैं ब्रह्मा जी उनको कंसल्ट किया, और ब्रह्मा जी का जो कि पूरा वैदिक शास्त्रों का साक्षात्कार था, उनको पता था कि भगवान यहाँ पे हैं, तो वहाँ पे गए और प्रार्थना की। तो इसे बहुत ही अर्थ में पदम पदम यद विपदम, हर कदम पे खतरा है, ठीक चल रहा है ठीक चल रहा है, अचानक कभी भी हमारे जीवन में मुसीबत आ सकती है। जब मुसीबत आएगी और अगर हमें इस शास्त्रों का आध्यात्मिकता का कुछ साक्षात्कार होगा तो हम किनकी शरण में जाएंगे, तो हम भगवान की शरण में जाएंगे। जय श्री श्री राधा राधिका भगवान की, श्री कृष्ण बलराम की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की। लेकिन अगर साक्षात्कार नहीं होगा, सिर्फ थ्योरेटिकल ज्ञान होगा, तो फिर हमें क्या लगने लगते हैं, कई तरह के डाउट आ जाएंगे, पता नहीं ये प्रोसेस ठीक भी है कि नहीं, इतने दिनों से मंत्रों का जप कर रहे हैं, भागवतम पढ़ रहे हैं, भगवान के सामने रोज कीर्तन करते हैं, है कि नहीं, पता नहीं ये सब क्या हमारी मदद करेंगे। लेकिन जब भी कभी भी मुसीबत आए, हम इस प्रसंग से देख सकते हैं कि हमेशा हमें अपने सीनियरों को कंसल्ट करना चाहिए, शास्त्रों में पूरा भेद रखना चाहिए और भगवान के सामने जाना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं कि इंग्लिश में लिखा हुआ है कि नीडफुल एक्शन इज टेकन बाय लॉर्ड, कि जो भी जरूरत एक्शन है भगवान लेते हैं, फिर भगवान हमारी पूरी तरह से सुरक्षा करते हैं। नहीं तो कई बार प्रोसेस में ही डाउट आ जाता है, पता नहीं क्या है। अगर मान लीजिए आप यमुना एक्सप्रेसवे से जा रहे हैं दिल्ली से वृंदावन, तो पूरे दिन में कितनी गाड़ी जाती है, लेकिन हम देखते हैं कभी कभी 2-4 गाड़ी कुछ खराब हो जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हाईवे गड़बड़ है, क्या है हमारा कार गड़बड़ है, हमारे में कमी। अगर हमारे में पूर्ण श्रद्धा रहेगी, ये जो भक्तों का संघ है, ये जो सीनियर वैष्णव है, ये जो वैदिक ग्रंथ है श्रीमद् भागवतम है, ये भगवान है, ये सब हमारी हेल्प करने के लिए, इसमें श्रद्धा रहेगी तब हम इनकी शरण लेंगे। जैसे हम इससे पीछे प्रसंग में देखते हैं कि किस तरह से गजेंद्र जो है जब उनके ऊपर समस्या आई तो उन्होंने भगवान को पुकारा और भगवान ने उनकी पूरी सुरक्षा की, और इस प्रसंग में भी हम आगे चल के देखेंगे कि किस तरह से भगवान जो है उनका पूरा रक्षा करते हैं। और साथ ही श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि इस वैदिक ग्रंथों को ब्रह्मा जी ने कैसे क्या किया था इनको सुना था, और सुनने के ऊपर प्रभुपाद जी बता रहे हैं। तो वास्तव में आध्यात्मिक जीवन में जो है सुनने का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। जैसे कि हम जानते हैं कि जनरली हम तीन तरीके से हम ज्ञान लेते हैं, है कि नहीं, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। तो तीनों तरीके हैं ज्ञान लेने के। कुछ चीज़ों को हम देख के समझते हैं, किसी चीज़ के बारे में हम अनुमान लगाते हैं, या किसी को चीज़ों के बारे में सुनकर हमें ज्ञान प्राप्त होता है। लेकिन जनरली अगर देखा जाए तो भौतिक दृष्टि में, जो भौतिक संसार में जो ज़्यादातर लोगों का बिलीफ सिस्टम किस चीज़ पर, देखने पर, प्रत्यक्ष प्रमाण पर। हम देखने के बाद जो है चीज़ों पर विश्वास करते हैं जनरली। इसलिए आप देखेंगे कि पूरे इवन सड़कों पर भी जितने भी बिलबोर्ड्स हैं, एक ही जो है एडवर्टाइज को 20 बार 30 बार लगाया जाता है, ताकि हम इसको जितना देखेंगे उतना हमारे मन में संस्कार होगा और फिर हम उस चीज़ को प्राप्त करने की इच्छा करेंगे। तो जनरली ये भौतिक जगत में ही होता है कि लोग जो है उनका जो बिलीफ सिस्टम होता है वो देखने के ऊपर आधारित है। लेकिन अगर देखा जाए तो क्या हम वास्तव में हर चीज़ देख सकते हैं? हम जानते हैं कि हमारी इंद्रियाँ अपूर्ण इंद्रियाँ हैं, इनको जो है देखने की अपनी लिमिटेशन है, इनके कंडीशन है। बाकी जो प्रत्यक्ष प्रमाण है, अनुमान प्रमाण है, इससे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, लेकिन इसकी अपनी लिमिटेशन है, अपने कंडीशन है इनके। जैसे कि मान लिया कि अगर हम यहाँ पे हैं, अगर पूरा अंधेरा हो और अगर हमें वहाँ छोड़ दिया जाए, हालांकि हमारी आँख खुली है, हम अपने आप को भी नहीं देख सकते, हम अपने हाथ भी नहीं देख सकते, पैर नहीं देख सकते, कुछ नहीं देख सकते, इवन हम सूर्य को भी नहीं देख सकते उस सेंस में। तो इवन भौतिक संसार की जो चीज़ें हैं अगर हम उसको नहीं देख सकते, तो जो आध्यात्मिक संसार की चीज़ें हैं, जो बिल्कुल भौतिक संसार से परे है, दिव्य है, उसको हम कैसे देख सकते? इसलिए ये जो है चीज़ है आध्यात्मिक संसार के लिए एक्ट नहीं करता। तो इसलिए आध्यात्मिक चीज़ को समझने के लिए हमारा बिलीफ सिस्टम क्या होना चाहिए? सुनने के ऊपर आधारित होना चाहिए, शब्द प्रमाण पर आधारित होना चाहिए। हम जो है इन चीज़ों को सुनकर समझ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर कोई बच्चा है वो स्कूल में जा रहा है और वहाँ पे पढ़ रहा है, तो स्कूल में टीचर उनको बता रहा है कि देखो ऑस्ट्रेलिया नाम का एक जगह है, अमेरिका नाम का एक जगह है, तो बच्चा वहाँ पे सुनता है और वो विश्वास कर लेता है। हालांकि उसने जाके देखा नहीं है कि अमेरिका नाम का कोई जगह है या ऑस्ट्रेलिया नाम की कोई जगह है, बस वो सुनता है और उसको विश्वास करता है उसी तरह से। और ऐसा नहीं है कि ठीक है सुनना बहुत जरूरी है तो कहीं भी जाकर सुन लिए, किसी से भी सुन लिए। शिला प्रभुपाद जी बताते हैं भागवत अपने तात्पर्य में कि हमें जो है प्रमाणिक संप्रदाय में और जो भगवान के प्रमाणिक प्रतिनिधि हैं सिर्फ उन्हीं से सुनना चाहिए। अब बच्चे को भी पढ़ता है, ऐसे नहीं कि सड़क पर जाके कहीं भी किसी से कुछ भी पूछता है, वो गवर्नमेंट के द्वारा प्रमाणिक स्कूल में जाता है और जो ऑथराइज टीचर है उससे वो उस ग्रंथ को पढ़ता है, फिर उसको उस ग्रंथ में फेंक आता है। तो उसी तरह से हमें जो है प्रमाणिक संप्रदाय से जुड़ना चाहिए और जो भगवान के प्रमाणिक प्रतिनिधि हैं उनसे सुनेंगे तब जो है, और उसके बाद हमें उस पर विश्वास करनी चाहिए। और मान लीजिए कि उसमें से कोई बच्चा बोल सकता है कि नहीं ये हो सकता है ये कंट्री होगा, लेकिन हम ऐसे कैसे माने, हमें जो है जाके वहाँ पर देखना पड़ेगा। तो कुछ ठीक है आप वहाँ पर जा सकते हो, लेकिन फिर जाने के लिए वहाँ पर क्या है, कुछ योग्यता की भी जरूरत है। हर कोई ऐसे नहीं जा सकते हैं। तो क्या योग्यता है वहाँ पर जाने की? कि आपके पास वीजा होना चाहिए, आपके पास धन होना चाहिए, है कि नहीं, आपके पास ये सारे अरेंजमेंट होने चाहिए वहाँ जाने के, तब आप वहाँ पे जाओगे और देखोगे नहीं हाँ अमेरिका नाम का कोई जगह है, ऑस्ट्रेलिया नाम का कोई जगह है। लेकिन इस चीज़ को सिर्फ प्रूव करने के लिए हम वहाँ पे इतना टाइम वेस्ट करें, इतना वो करें, तो वो बुद्धिमानी का लक्षण नहीं है। बुद्धिमान कौन है? जो ऑथराइज चीज़ों से सुनकर उस पर विश्वास करता है, तो वो वास्तव में बुद्धिमत्ता है। और वास्तव में देखा जाए ठीक है वो वहाँ पे चला भी गया, तो क्या हम हर चीज़ों को देखने से समझ जाते हैं? जैसे शिला प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य में कह रहे, जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण इस धाम पे थे तो उनको हजारों लोगों ने देखा, लाखों लोगों ने देखा, परंतु कितने लोग ये समझ पाए कि ये जो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है? बहुत रेयर। तो हर बार हर चीज़ देख के भी नहीं जानी जा सकती है। जैसे कि मान लीजिए कि आप गाड़ी चला रहे हैं और अचानक जो है मान लीजिए आपकी गाड़ी खराब होगी, तो आप गाड़ी से उतरते हैं, है कि नहीं, अपना मान लीजिए जैसे बोनट उठाया आपने उस मशीन की तरफ देखे, लेकिन अगर मान लीजिए कि आपको उसके बारे में कुछ नहीं पता है तो क्या आप उसको ठीक कर सकते हैं? नहीं कर सकते। चाहे हम उसको पूरा दिन देखते रहे फिर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, फिर कॉल करते हैं और कौन आता है, मैकेनिक आता है वहां पे और वो उसी चीज को देखता है और तुरंत ठीक कर देता है। तो वो कैसे ठीक करता है, क्योंकि उसको उस चीज के बारे में ज्ञान है, उसने उस चीज के बारे में सुना है। और उसने किससे सुना, अपने उस्ताद से, बॉस से। तो उसी तरह से अगर हम प्रमाणिक जगह पे रहेंगे और भगवान के प्रमाणिक प्रतिनिधि से अगर हम इन शास्त्रों के बारे में सुनेंगे और उसको सुनने से हमारा ज्ञान होगा, तभी हम वास्तव में देख पाएंगे। जैसे कि मान लीजिए कि अगर हम भगवान को देखते हैं तो क्या देखते हैं, लेकिन प्रतिमा नहीं तुम्हें साक्षात वज्रेन्द्र नंदन, जो हम भगवान को देखते हैं साक्षात वज्रेन्द्र नंदन है, कृष्ण है। लेकिन अगर मान लीजिए किसी को ज्ञान नहीं है, वो अगर मंदिर आता है तो हर कोई अलग अलग दृष्टि से देखता है, तो इसलिए हर चीज देख कर भी नहीं समझी जा सकती। सुनना जो है बहुत ही आवश्यक है, इसलिए जो वैदिक शास्त्र हैं उनको श्रुति भी बोला गया। श्रुति मीन्स विच इज हर्ड, जो सुना गया। पहले हम जानते हैं कि पहले के युगों में जो लोग होते थे वो श्रुतिधर होते थे, वो उन चीजों को सुनकर समझते थे, सुनकर पूरा उनको याद हो जाता था। लेकिन जब वेदव्यास जी ने देखा कि इस कलयुग के प्रारंभ में, तो उनको लगा कि नहीं, अभी जो है इनको लिपिबद्ध करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। लेकिन वास्तव में इसको श्रुति बोला गया, इसको जो है दर्शन भी बोलते हैं वैदिक शास्त्रों को, कि हम जो है एब्सोल्यूट ट्रूथ का दर्शन कर सकते हैं इन शास्त्रों को सुनने से। तो इसलिए जो है सुनने का बहुत ही महत्वपूर्ण है इस आध्यात्मिक जीवन में, इस आध्यात्मिक चीजों को समझने के लिए। नहीं तो इसलिए प्रभात जी जो है इस पर बहुत ही बल देते थे, और कि ये हमारी जितनी भी सेवाएं हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है, श्रवण और कीर्तन। हालांकि हर कोई और भी, जैसे कि हम जानते हैं कि नवदा भक्ति में भक्ति के 9 अंग हैं, और ऐसा वहां पर बताया गया कि हर अंग जो है अपने में पूर्ण है, लेकिन जो सुनना है वो सबसे पहले आता है, श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण पाद सेवनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदन, सबसे पहले जो है श्रवण है। क्योंकि सुनने से ही आध्यात्मिक चीजें शुरू होती है। हालांकि हर चीज इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले सुनना। इसलिए हमें भी जो है अपने जीवन में इस चीज को समझना चाहिए और प्रतिदिन जो है इस भागवत का सुनने का प्रयास करना चाहिए। तभी शिला प्रभुपाद जी की कृपा से हम देखते हैं कि आज पूरे इस्कॉन में हर रोज सुबह और शाम को 8 से 9 हम जो है श्रीमद् भागवत क्लास करते हैं। क्योंकि प्रभुपाद जी ने एक जगह ये भी बोला है कि हम जो ये मंदिर बनाए हैं वो किस लिए, ताकि लोग यहाँ पे आए और भगवान के बारे में सुने। जनरली लोग आते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, प्रसाद खाते हैं, ये भी अच्छा है, लेकिन जो है लोगों को मंदिर में आना चाहिए और यहाँ पर बैठकर सुनना चाहिए, तब जो है हमें वास्तव में इसका भगवान को देखने का तब असली लाभ मिलेगा। क्योंकि हम जो है कैसे देखते हैं, शास्त्र चक्षु, वी सी थ्रू स्क्रिप्चर्स, शास्त्रों के द्वारा जो हम चीजों को देख सकते हैं। तो इसलिए, और वैसे भी कोई भी अगर सेवा करना हो तो हम सेवा को सही कॉन्शियसनेस में करने के लिए, सही चेतना में करने के लिए हमें जो है ज्ञान का होना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं अगर कोई अर्च विग्रह की सेवा कर रहा है, तो प्रभुपाद जी ने बोला जितने भी पुजारी हैं उनका जो है नियमित रूप से भागवत कक्षा में बैठना आवश्यक है। अगर हम नहीं बैठेंगे तो कुछ दिनों में क्या होगा कि ये जो सेवा है ये मैकेनिकल हो जाएगी, है कि नहीं। हम सुपरफिशियल तरीके से करेंगे भगवान की सेवा, लेकिन अगर हम प्रतिदिन सुनेंगे तो हम सही तरीके से सेवा कर, चाहे कोई भी सेवा हो, अगर हम चाहे पुस्तक वितरण भी क्यों ना हो, लेकिन अगर हम पुस्तक वितरण भी करना है, अगर सही चेतना में करना है, ऐसा बताया जाता है ये जो वैदिक ग्रंथ है स्वयं भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न है, ये जो है कृष्ण प्रेम है। तो पुस्तक नहीं बांट रहे हम, क्या बांट रहे, कृष्ण प्रेम बांट रहे। लेकिन अगर हम खुद ही इसको नहीं पढ़ रहे, खुद ही हमें इसका ज्ञान नहीं है, तो हमें क्या लगेगा, पता नहीं इतनी गर्मी में रेड लाइट पे है कि नहीं, ये हॉकर की तरह पता नहीं हम क्या बेच रहे। एक बार हम इसी तरह बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, तो एक व्यक्ति ने ले लिया गीता, तो फिर गीता लिया, हमने बोला उसको कि इसकी कुछ सेवा भी है पैसे लक्ष्मी के बारे में, तो कह रहा पैसे तो छोड़ो, ये गीता भी नहीं दूंगा, गीता तब मिलेगी, पहले बताओ इसमें से 5 श्लोक फिर गीता मिलेगी। 5 श्लोक सुनाओ इस गीता से, 5 5 5। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गीता जो है तुम लोग ऐसे यहाँ पे धंधा बना रखा है, सिर्फ बेचने के लिए आता है, तो 5 श्लोक सुनाओ फिर गीता वापस दूंगा। तो पता नहीं शायद उसको 2 3 श्लोक कुछ सुना ही मैंने, तो फिर उसके बाद जो है उसने जो है फिर 500 रुपये दिए ऐसे। तो फिर मैंने उसको चार पांच और गीता दिया, तो फिर उसने और सेवा किया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमें जो है इसको पढ़ना भी, जो एक बार प्रबोधानंद सरस्वती महाराज बता रहे थे कि महाराज कह रहे कि जब मैं एक बार संकीर्तन में था तो एक और भी संकीर्तन टीम में एक भक्त थे, वो इस तरह से हम लोग जाते थे अलग अलग जगहों पर डिस्ट्रीब्यूशन करते थे। तो एक बार एक भक्त था, वो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा था, तो उसने किसी को पुस्तक दिया और उसने पुस्तक लिया और उसने ऐसे देखा, पुस्तक खोल के उसने देखा यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो है श्री श्रीमद, जैसे इंग्लिश में लिखा हुआ था एसी भक्ति विधान स्वामी श्रील प्रभुपाद। तो उसने व्यक्ति ने बोला कि उस भक्त को कि ये भक्ति विधान स्वामी प्रभुपाद तो समझ आ रहा है, ये एसी क्या है? तो उस भक्त को उतना पता नहीं था कि ये एसी क्या है, नया भक्त था। तो उसने बोला कि ये जो भक्ति विधान स्वामी प्रभुपाद है ना, ये हमेशा एसी में रहते हैं। आप देखोगे कि जिस मंदिर में रहते हैं, जिस कमरे में, वहां पे एसी है, जिस गाड़ी में बैठते हैं वहां पे एसी होता है, जब एरोप्लेन में जाते हैं वहां पे एसी होता है, तो हमेशा ये एसी में रहते हैं। तो इसलिए इसका नाम जो है, इनका नाम एसी भक्ति विधान स्वामी प्रभुपाद। तो इस तरह से हमें जो है डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करनी चाहिए। ये जो प्रभुपाद ने पुस्तक लिखे हैं ये सिर्फ बांटने के लिए नहीं है, बांटना भी जरूरी है, लेकिन उससे पहले जो है हमें खुद इसका ज्ञान होना चाहिए, हमें जो है खुद इसको पढ़ना चाहिए। उसी तरह से कोई भी सेवा है कि नहीं, अगर मंदिर का ही मैनेजमेंट कर रहे हैं, अगर मान लिया कि सही चेतना में नहीं है, अगर सही रूप से चीजों का ज्ञान नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, फिर कंट्रोल करेंगे। इवन प्रीचिंग भी कर रहे हैं, सिर्फ सुन नहीं रहे, सुना रहे हैं, पढ़ नहीं रहे, पढ़ा रहे हैं, है कि नहीं, तो क्या करेंगे? ये क्या है वास्तव में? ये फिर धीरे धीरे जो हम यश की तरफ भागेंगे, चाहे कोई भी सेवा हो। तो सेवा को सही चेतना में करने के लिए, सही रूप से करने के लिए, ये जो है शास्त्रों को सुनना, समझना, इसको अपने जीवन में उतारना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे कि जो है ये सर्वम जो है क्या है, वास्तव में एक प्रोसेस है, इसको सुनना है, इस पर मनन करना है और इसको अपने जीवन में उतारना है। तो इसलिए हमारे सेवा का सबसे महत्वपूर्ण अंग होना चाहिए कि प्रतिदिन हम क्लास में आके बैठे। लेकिन जनरली क्या होता है कि हम कई बाधाएं आती है कि हम जो है क्लास में आए और ध्यान पूर्वक सुने। सबसे पहले हम देखते हैं कि पता नहीं कौन क्लास दे रहा है, पता नहीं आज ये इस व्यक्ति के बारे में तो पता ही है, पता नहीं क्या बोलेगा हर रोज भाई। और सबसे बड़ी बात तो हमें पता है कि आज पूरे वीक में फ्राइडे को प्रभुपाद जी की क्लास होती है, उसी दिन हम कोई ना कोई और सेवा प्लान करते हैं कि प्रभुपाद जी की क्लास है, वहां पे क्या बैठना, अगर पढ़ना भी होगा तो बाद में पर्ची लेके पढ़ लेंगे ऐसा। तो उस समय जो है कुछ और जाके सेवा करते हैं। तो श्रवण के जगह पे हम जो है किसी और चीज, किसी और सेवा को या किसी और चीज को इम्पोर्टेंस दे देते हैं। लेकिन नहीं, इवन मंदिर में रहने वाले या फिर मंदिर के आसपास जो भक्त हैं, जितना भी संभव हो उनको जो है मंदिर में आके सुनना चाहिए। और श्रवण जो है कैसे की जाती है, भक्तों के संग में बैठकर। हम देखते हैं कि परीक्षित महाराज ने कैसे श्रवण किया, इतने सारे भक्तों के बीच में बैठकर श्रवण किया। जो सौनक ऋषि थे नामी शरण्या में, उन्होंने कैसे श्रवण किया, सभी भक्तों के बीच में, भक्तों के बीच में संग में बैठकर श्रवण करना चाहिए। कई बार लोग कहते हैं कि नहीं ठीक है, हमें जो है वैसे भी सुन सकते हैं हम MP3 प्लेयर पे और इत्यादि, ठीक है हम सुन सकते हैं। रूप गोस्वामी ने बोला है युक्त बैराग्य चित्ते, हर चीज जो हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। अगर मंदिर में आना संभव नहीं है तो हम इससे सुन सकते हैं, लेकिन जितना संभव हो हमें मंदिर में आकर भक्तों के संग में बैठकर इसको सुनना चाहिए। और इस तरह से अगर हम सुनते हैं, जैसे हम देखते हैं शास्त्रों में कि किस तरह से प्रहलाद महाराज, वो तो माँ के गर्भ में थे और उन्होंने अपने गुरु नारद मुनि से सुना और सुनकर ही उनको सारा का सारा वैदिक ज्ञान। हम जानते हैं कि प्रहलाद महाराज द्वादश महाजन में से एक हैं। और किस तरह से रुक्मिणी जी हैं, हम जानते हैं उनके बारे में कि वो बचपन से ही अपने साधु संत उनके घर में आते थे और वो भगवान के बारे में सुनते थे। और उन्होंने एक बार किस तरह से जो है नारद मुनि से उन्होंने भगवान के गुणों के बारे में सुना, भगवान के 6 ऐश्वर्यों के बारे में सुना, और सुनकर इतने प्रभावित हो गई कि उन्होंने जो है अब भगवान को प्राप्त करने के लिए उन्होंने भगवान को जो अपना जीवन का लक्ष्य माना और उन्होंने भगवान को किसी भी कीमत पे उन्होंने भगवान को प्राप्त करना चाहा। तो भगवान से इतना आकर्षण हो गया सुनने मात्र से। और हम एक उदाहरण देखते हैं, प्रसिद्ध उदाहरण है, जैसे कि दक्षिण भारत में एक राजा थे, राजा कुलशेखर। तो बहुत ही प्रतापी राजा थे, और अपने राज्यों की वो बहुत ही अच्छे ढंग से अपने राज्यों का संचालन करते थे। और उन्होंने जो राजा कुलशेखर थे, भगवान के गुणगानों के लिए बहुत सारे गीतों भी लिखी है। उसी गीत का जो एक पुस्तक है जिसका नाम है मुकुंद मालश्रो। और तो ये जो राजा कुलशेखर थे, ये इनका एक क्या था कि प्रतिदिन ये अपने महल में संतों को बुलाते थे और उनसे भगवान के बारे में सुनते थे, भगवान की कथा के बारे में सुनते थे। और खासकर कौन सी कथा? भगवान राम की कथा। श्री राम की कथा उनको सुनने में बहुत ही अच्छा लगता था। तो एक बार की बात है, एक ब्राह्मण जो है उनको भगवान राम की कथा सुना रहे थे। और वो कथा था कि जो भगवान जो है मधु और कुशा, जानते हैं इन दो राक्षसों से युद्ध कर रहे हैं। और ब्राह्मण उनको पूरा डिटेल में सुना रहे थे कि किस तरह से जो भगवान है इनके साथ युद्ध हो रहा है। तो जब राजा कुलशेखर उनको सुन रहे थे, तो सुनते सुनते जो है वो बहुत ही मतलब ऐसा लगा कि वो बिल्कुल उसी लीला में प्रवेश कर गए। और उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि पता नहीं ये राम जो है इन दोनों राक्षसों से लड़ रहे हैं। उनको लगा कि अभी जो है हमें यहाँ से तुरंत जाना चाहिए और राम की हेल्प करना चाहिए, राम को रक्षा करना चाहिए और इन दोनों राक्षसों को मारना चाहिए। तो उन्होंने तुरंत बोला कि जितने भी सैनिक हैं, सैनिक सबको बोला कि सभी जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, अभी हमें तुरंत जाना होगा राम की रक्षा करने के लिए और हमारे पास बहुत ही कम समय है। तो सभी सैनिक जो है तैयार हो गए। लेकिन जब मंत्री ने देखा तो उन्होंने बोला कि यार ये तो बहुत गड़बड़ हो गई, मतलब पता नहीं ये अभी सारे सैनिकों को लेके और ये जा रहे हैं। तो उनको लगा कि पता नहीं कैसे राजा को रोका जाए, उनको समझ नहीं आ रहा था। तो फिर मंत्री साहब ने आपस में मीटिंग की, तो फिर उन्होंने एक प्लान सोचा कि कैसे इनको रोका जाए। तो हालांकि कुलशेखर जी अपने सैनिकों को लेकर निकल चुके थे, तो फिर भी जो है पीछे से सैनिक जो मंत्री थे वो किसी और रास्ते से आए और उन्होंने सैनिकों को रोका बीच में। और उन्होंने बोला कि रुको रुको, एक बहुत ही सुंदर खबर है। तो उन्होंने बोला क्या? कह रहे जो अभी अभी खबर आई है कि भगवान श्री राम जो है जीत चुके हैं, उन्होंने इन दोनों राक्षसों को मार दिया। तो ये सुनकर जो है कुलशेखर जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने बोला कि ठीक है, तो अब सब हम वापिस जाएंगे अपने राज्य में और इसका जो है पूरा का पूरा फेस्टिवल मनाएंगे, इस खुशी का जो है पूरा जश्न मनाएंगे। तो सभी चलो, सभी चले गए। तो मंत्री ने बोला फिर उन ब्राह्मणों को कि देखो, और उनको लगा कि ये तो अभी आगे भी सुनेंगे राम की कथा। तो उन्होंने उन ब्राह्मण को बोला कि देखो, अभी आगे से जब आओगे सुनाने के लिए तो कोई ऐसी कथा मत सुनाना कि जिससे जो है इन राजा को, मतलब राजा कुलशेखर हैं, वो उदास हो जाएं या इनको चिंता होने लगे। लेकिन हम जानते हैं कि रामलीला में ऐसे कितने कथा हैं, ज़्यादातर तो जो है इसी में। तो हालांकि एक बार की बात है, फिर एक दूसरे ब्राह्मण आए, हालांकि उनको इन चीज़ का पता नहीं था, लेकिन फिर भी उतनी ऐसी कहानी भी बहुत कम है रामलीला में। तो उन्होंने सुनाना शुरू किया कौन सा? सीता अपहरण की कहानी। तो उन्होंने बताया कि किस तरह से रावण जो है सीता का अपहरण किया। जब ये सुना कुलशेखर तो उनसे रहा नहीं गया, वो जो है अपना छाती फाड़ने लगे, जमीन पे लौटने लगे। उनको लगा कि अब तो जो है मतलब अभी जो है हमें तुरंत जाना होगा लंका किसी न किसी तरह और रावण को मारना होगा, क्योंकि समय बहुत कम है। फिर से उन्होंने सभी सैनिकों को बुलाया कि सभी आओ जल्दी, हमारे पास बहुत कम समय है, इस पूरा समुद्र को पार करना है, लंका जाना है और सीता की रक्षा करनी है। और उन्होंने बोला कि आज जो है रावण जो है मेरे से बच नहीं सकता, आज उसको मरना ही होगा। तो सभी सैनिकों को लेकर चले गए। फिर मंत्री सोचने लगे इस बार क्या किया जाए। तो मंत्री भी पीछे पीछे गए, सब उन्होंने देखा। जब वो समुद्र के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा इतना विशाल समुद्र है, इसको कैसे पार किया जाए, कैसे लंका पहुंचा जाए। तो उनको फिर उन सब सैनिकों ने और मंत्री ने भगवान से प्रार्थना करने लगे। लेकिन कुलशेखर ने बोला चिंता करने की जरूरत नहीं है, अभी जो है हमें इस समुद्र को तैर के पार करना होगा, हमारे पास बहुत ही कम समय है, कुछ भी और उपाय के बारे में मत सोचो, इसको तैरो और जल्दी से लंका जाना है और रावण को मारना है। तो फिर वो अब लगा कि अभी तैरेंगे समुद्र को तैरना। तो उन लोग जब वहां से प्रार्थना करने लगे तो उसी समय जो है वहां पे स्वयं भगवान श्री राम जो है सीता के साथ प्रकट होते हैं उनके सामने, कुलशेखर के सामने। तो और बोलते हैं कि देखो तुम चिंता मत करो, हमने राम को मार दिया है और ये देखो मेरे साथ सीता है, रावण के शरीर हमने जो है रावण को मार दिया और मेरे साथ सुरक्षित जो है सीता यहीं पर है। तो जब कुलशेखर इस तरह से सीता को देखता है और राम को देखते हैं तो बहुत ही खुश हो जाते हैं। और फिर भगवान उनको बोला कि आप जाओ अपने राज्य में जाओ अपने राज्य का संचालन करो। तो फिर से वहां पे सभी सैनिकों और मंत्री को लेकर आए कुलशेखर, और उन्होंने बोला कि फिर से जो है हम अपने राज्य में जश्न मनाएंगे, इस बार जो है रावण जो है मारा गया। तो इस कहानी के पीछे तात्पर्य यह है, कहने का मतलब कि जब हमें सुनना चाहिए तो बहुत ही एब्जॉर्ब होकर सुनना चाहिए, है कि नहीं, पूरे एब्जॉर्प्शन के साथ। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि किस तरह से जब वे सुन रहे थे तो पूरा का पूरा जो है एकदम एब्जॉर्ब होकर लीला में प्रवेश हो गए। तो अगर इस तरह से एब्जॉर्प्शन से सुनेंगे तब जो है स्वयं हम देखते हैं कि भगवान जो है वहां पे प्रकट हुए। तो इसलिए जो है हमें सुनने का महत्व को समझना चाहिए और इसको बहुत ही फेथफुली श्रद्धापूर्वक सुनना चाहिए। और प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में और एक चीज के ऊपर उन्होंने बताई कि प्रार्थना के ऊपर, जब ब्रह्मा जी वहां पे गए स्वयंदीप तो उन्होंने क्या किया, भगवान से प्रार्थना की। वास्तव में देखा जाए तो जो श्रीमद् भागवतम है ये पूरा का पूरा क्या है, अन्य अन्य भक्तों के द्वारा प्रार्थना ही है, फुल ऑफ श्रीमद् भागवतम इज फुल ऑफ प्रेयर्स। तो प्रार्थना का जो है हमारे जीवन में जो नवदा भक्ति के अंगा है वंदनम, उसका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। और तभी प्रभुपाद जी ने अपने आचरण से सिखाया। प्रभुपाद जी कहते थे कि मुझे जो है अपने शिष्यों से एक ही शिकायत है कि वे माया से नहीं डरते। और फिर प्रभुपाद जी प्रतिदिन भगवान से प्रार्थना करते थे और वो कहते थे कि माया कैन नॉट टच मी वह, क्योंकि भगवान जो है, सॉरी, प्रभुपाद जी जो है प्रतिदिन भगवान से प्रार्थना करते थे। इसलिए जो है हम साधक के जीवन में जो है सो इस प्रार्थना का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। और प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ये प्रार्थना जो क्या है, अपने मनगढ़ंत प्रार्थना नहीं होनी चाहिए, प्रार्थना जो है पूरा वैदिक शास्त्रों से अप्रूव होना चाहिए, जिनको कि जो कि शास्त्रों में हो और जिनको आचार्यों ने अपनाया हो। तो उसी तरह से यहाँ पे उन्होंने बताया कि वो कौन सी प्रार्थना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। तो ये, और उन्होंने बोला कि इस प्रार्थना करने से पहले एक और प्रार्थना है जिनकी कि श्री चैतन्य चरितामृत में वर्णन है और उनको आचार्यों ने अपनाया है। क्या है वो, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। तो कह रहे हैं हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए, और इसके पहले प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमें इस पंच तत्व का मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। और प्रभुपाद जी एक जगह लिखते हैं कि अगर हम इस पंच तत्व मंत्र का उच्चारण करेंगे तो इस हरिनाम के प्रति, जैसे हम जानते हैं कि 10 तरह के अपराध होते हैं, तो हम इन अपराधों से बच सकते हैं अगर हम पंच तत्व का उच्चारण करते हैं। और फिर प्रभुपाद जी कह रहे हैं तात्पर्य में कि ये जो दो प्रार्थना है ये सफिशियंट है हमें भगवान को दर्शन करवाने के लिए, हम अपने जीवन में जो है परफेक्शन प्राप्त कर सकते हैं सिर्फ इन दो प्रार्थनाओं को करके। और प्रभुपाद जी साथ में ये भी कह रहे हैं कि आप जो नरोत्तम दास ठाकुर, लोचन दास ठाकुर, श्री भक्ति विनोद ठाकुर, अगर आपको भजन गाना है तो आप इनके भजन गा सकते हैं, ये जो है ऑथराइज्ड भजन है कि नहीं। और एक जगह ये जो सॉन्ग्स ऑफ वैष्णव आचार्य है उसमें आमुख में श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ये जो वैष्णव भजन है ये जो वैदिक शास्त्र है उससे अभिन्न है कि नहीं। इसको अगर हम पढ़ते हैं और शास्त्रों को पढ़ते हैं उसमें कोई अंतर नहीं है। तो अगर हमें कोई भजन भी गाना है तो हम इस भजन को गा सकते हैं। और साथ में जब हम ये भजन कर रहे हो या इस मंत्रों का उच्चारण कर रहे हो तो इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पे जैसे लिखा गया है हिंदी में कि जब भगवान ब्रह्मा जी भगवान से प्रार्थना कर रहे थे तो एकाग्रचित होकर, इंग्लिश में लिखा हुआ है कि विथ फिक्स्ड माइंड, हमें जो है पूरा मन लगाकर प्रार्थना करनी चाहिए, है कि नहीं। लेकिन प्रभुपाद जी अभी देखते हैं कि यहाँ पे इंद्र परेशान है तो ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी वहां पे भगवान के सामने जा रहे हैं और ध्यानपूर्वक प्रार्थना कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ जब हमारे जीवन में दुख आते हैं तभी हम भगवान के पास जाकर प्रार्थना करेंगे। आज प्रभुपाद जी की कृपा से हम जो है इस प्रार्थना को हर रोज कर रहे करते हैं कि नहीं, हर रोज जो हम 16 माला का जप कर रहे हैं। लेकिन पॉइंट क्या है कि ये जो हम जप कर रहे हैं ये बहुत ही ध्यानपूर्वक होना चाहिए। अगर हम ध्यान से भगवान के सामने जाते हैं या प्रतिदिन जप करते हैं या कुछ भी शास्त्रों को पढ़ते हैं, अगर हम इस पूरा मन लगाकर करते हैं तब क्या करते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि भगवान जो है उसको सुनते हैं। जो ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की तो भगवान ने उसको सुना। तो इसी तरह से हम अगर जप करें, अगर हम ध्यानपूर्वक जप करेंगे तो भगवान उसको सुनेंगे। और सुनने के बाद क्या है कि जो भी नीडफुल एक्शन कैन बी टेकन, जो भी हमारे लिए जरूरत है फिर भगवान उसको प्रदान करते हैं। जो भी सुरक्षा है भगवान जो है फिर हमें देते हैं, और फिर हम आगे देखेंगे कि किस तरह से भगवान ने ब्रह्मा सारी देवी देवताओं की रक्षा की, और भगवान हमारी भी रक्षा करेंगे, पूरे जीवन रक्षा करेंगे अगर हम ध्यानपूर्वक प्रार्थना करते हैं। तो इस तरह से जो है हम आज के इस श्लोक से काफी कुछ सीख सकते हैं कि हमारे जीवन में जो है हमेशा कभी भी समस्या है तो हमेशा एक सीनियर भक्त को कंसल्ट करना जो है हमेशा अच्छा होता है, उनके पास जाएं, है कि नहीं, शास्त्रों में जो है अपना फेथ रखें, है कि नहीं, सुनने के महत्व को समझें, और उसके बाद जो है प्रार्थना करें ध्यानपूर्वक। ध्यान से अगर प्रार्थना करते हैं तो भगवान जो है हमारे सामने प्रकट होते हैं और हमारी पूरे जीवन रक्षा करते हैं। जय जगत गुरु श्री प्रभुपाद की, श्री श्री राधा राधिकांत भगवान की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, श्री श्री जगन्नाथ वल्लभ सुभद्रा महारानी की, श्री श्री गौर नित्य भगवान की, नित्याय गौर प्रेमानंद की।